तो आज का जो टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ। हम फ्यू मोमेंट्स साइलेंस से स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट हम सभी अलर्ट होकर बैठेंगे। आंखें बंद करेंगे। कुछ क्षणों के लिए हम अपना ध्यान मस्तक के मध्य एकाग्र करते हैं। ये क्षण हमारे जीवन का बहुत अमूल्य समय है। जीवन की भाग दौड़ से समय निकालकर कुछ क्षणों को अनमोल बनाने, सफल करने के लिए अपने साथ समय बिताने के लिए अपने आप को जानने के लिए पहचानने के लिए हम सभी यहां आए हैं। यह क्षण जीवन के बहुत अनमोल क्षण है, क्योंकि यह मेरा अपना पल है। इस समय को हम बहुत अच्छी तरह से सफल करें और अपने जीवन को निखारते हुए इस मनुष्य जीवन को उज्जवल बनाएं। तो यही भाव हम आज समझेंगे। ओम शांति। एक बार एक पिता जो है अपने बच्चों को जीवन के बारे में कुछ सिखाना चाहता था, तो वो उनको एक पेड़ देखने के लिए भेजता है। वो पेड़ था पियर का झाड़। कुछ समय के बाद वो चारों ही बच्चे वापस आते हैं। पहले से पूछा कि आपको वो वृक्ष कैसा दिखा, तो पहला बेटा कहता है कि जब मैंने वो वृक्ष को देखा तो वो बहुत झुका हुआ वृक्ष था, उसकी टहनियां सब झुकी हुई थी, बहुत अगली वृक्ष था और जैसे सिकुड़ गया है ना, उस प्रकार का वृक्ष था। दूसरे बेटे ने कहा कि मैंने भी वृक्ष देखा, लेकिन मैंने तो ऐसा रूप नहीं देखा। मैंने देखा कि ये वृक्ष जो है वो पूरा ग्रीन था और उसमें बहुत छोटी छोटी कलियां थी, बहुत सुंदर वृक्ष था। तीसरे ने कहा मैंने तो कलियां देखी नहीं, मैंने तो देखा कि इस वृक्ष में बहुत सारे फूलों से भरा हुआ है और उस वृक्ष के आसपास बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो चौथे ने कहा कि ना मैंने कलियों को देखा ना मैंने फूल को देखा, लेकिन मैंने देखा कि ये वृक्ष जो है ना पूरा फलों से लदा हुआ है। तो ये चारों ने एक ही वृक्ष को अलग अलग रूप में क्यों देखा? क्योंकि वो चारों ही बच्चे जो है अलग अलग मौसम में उन्होंने उस वृक्ष को देखा। एक ने सर्दी में देखा तो दूसरे ने गर्मी के समय में देखा, तो किसी ने बाहर के समय देखा, तो किसी ने पतझड़ के समय में देखा। तो एक ही वृक्ष जो है उनको अलग अलग रूप में नजर आया। पर क्या एक ही मौसम में देखने से उस वृक्ष की वास्तविकता का पता चल सकता है? नहीं। अगर आपको इस वृक्ष की सच्चाई जाननी हो तो आपको उसे हर मौसम में देखना जरूरी है, राइट? अगर आप सिर्फ कलियां देखेंगे तो आपको फल दिखाई नहीं देगा, सिर्फ फल देखेंगे तो फूल दिखाई नहीं देंगे। तो इसी प्रकार जीवन के मौसम भी क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। और अगर मुझे जीवन को पहचानना है तो मुझे उसको हर मौसम में, हर रंग में देखना उसको जरूरी है। तो जो आज का टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ, स्पेक्ट्रम माना लैटिन शब्द से निकला है स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा माना देखना, टू सी, और स्पेक्ट्रम माना एक रंग नहीं लेकिन बहुत सारे रंग। जब हम कहते हैं हम जो देखते हैं, व्यक्ति जैसा देखता है तो उसे वैसी दुनिया दिखाई देती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि आपको नजर आएगी। बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट है आंखें होती हैं, आंखों के अंदर वो पावर होती है कि वो किसी भी प्रकार की इमेज को, दूर की इमेज को भी बहुत क्लियरली देख सकती है एडजस्टमेंट के द्वारा। इसी प्रकार हमारी दृष्टि से हम दुनिया को जिस प्रकार से देखना चाहते हैं वो हम देख सकते हैं। इसलिए कहते हैं नूर जहां, जहां नूर है, जैसा हमारा नूर है वैसा हमारा जहां होगा। अब जो हम देखते हैं, आपने कुछ भी चीज देखी तो उसी प्रकार से आपके थॉट्स चलेंगे, आपके विचार उसी प्रकार के चलेंगे, आपकी मेमोरीज भी उसी प्रकार की होगी, आपकी फीलिंग्स वैसी होगी, आपके अनुभव वैसे होंगे, आपके कर्म भी उसी प्रकार के होंगे, और इसी प्रकार आपका जीवन भी ऐसा बनता जाएगा। इसीलिए कहते जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि क्यों कहा, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी दृष्टि होती है इसी प्रकार की लाइफ हम क्रिएट करते हैं। इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है आज के सदी के बहुत बड़े वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस जो है जब छोटा बच्चा था थर्ड स्टैंडर्ड में, तो वो घर आया एक दिन और उसने एक लेटर अपनी मदर को दिया, और उस लेटर में क्या लिखा था, उस लेटर में लिखा था कि तुम्हारा जो बेटा है, बच्चा जो है टॉमी, वो बहुत मंद बुद्धि है, इसीलिए तुम कल से उसे स्कूल में नहीं भेजना, हम उसको पढ़ा नहीं सकते। तो उस छोटे टॉमी ने उसकी माँ से पूछा कि क्या लिखा है इस लेटर में, तो उसकी माँ ने उसको कहा कि इस लेटर में लिखा है कि टॉमी जो है, तुम्हारा बेटा जो है ना, बहुत ज्यादा होशियार है, और हमारा स्कूल जो है ना इतना सक्षम नहीं है ऐसे होशियार बच्चे को पढ़ाने के लिए, इसीलिए कल से मैं तुमको इसी घर पे ही पढ़ाऊंगी। तो ठीक है कहा, और वो वहां पर ही पढ़ाती रही। फिर वो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको लेबोरेटरी खोलनी थी, तो उसकी माँ ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमारे घर का गैरेज है, वैसे भी हमारे पास गाड़ी नहीं है, वो ऐसे ही पड़ी है, तो वहां पर तुम अपना काम करो। इसी प्रकार जब वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया, और उसकी माँ के गुजरने के बहुत सालों के बाद एक दिन कबर्ड में उसको अचानक वो लेटर दिखाई दिया, और उस लेटर में क्या लिखा था कि तुम्हारा बेटा जो है वो बहुत मंद बुद्धि है, इसीलिए उसको स्कूल में नहीं भेजना। तो जब वो लेटर पढ़ता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अगर उसकी माँ ने वो बातों को देखकर उसी अनुसार, उसी दृष्टि से उसको देखा होता तो क्या होता, कुछ और ही उसकी जीवन होती। लेकिन उसकी, उस माँ की बच्चे के प्रति इतनी ऊंची नजर थी, और उस ऊंची नजर के कारण वो आज दुनिया को कई आविष्कार उन्होंने दिए, मेन जो इलेक्ट्रिक बल्ब। कई बार माता पिता भी आप देखेंगे बच्चों के लिए प्रति सोचते हैं कि तो ऐसा ही है, ये कभी बदलेगा नहीं, ये कभी सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, इसी प्रकार की बातें सोचते हैं। ये तो है ही ऐसा, इसके स्वभाव ही ऐसे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं? तो एक मां की नजर ने उस बच्चे को के जीवन को बदल दिया। तो क्या हम अपनी नजर से अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को क्या चेंज नहीं कर सकते, एक नई जीवन नहीं बना सकते? तो इसलिए ये हमारा नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सी नजर है? ये दो आंखें हैं। कौन सी आंखें हैं? कौन सी आंखें हैं? द थर्ड आई, जो हम तीसरा नेत्र कहते हैं। उसके द्वारा मैं क्या देख रहा हूं? पॉजिटिव देख रहा हूं, नेगेटिव देख रहा हूं, सत्यता देख रहा हूं या मुझे झूठ दिखाई देती है। एक हस्बैंड एंड वाइफ बनारस गए थे, रास्ते पर जा रहे थे तो पत्नी की नजर अचानक एक दुकान पर पड़ी और वो खुश होकर अपने पति को कहती है कि देखो, इस दुकान पर लिखा है कॉटन साड़ी 5 रुपया, नायलॉन साड़ी 10 रुपया, सिल्क साड़ी 20 रुपया, चलो सबके लिए हम खरीद लेते हैं। तो हस्बैंड कहता है कि जरा ठीक से देखो, तो स्त्री की दुकान है। तो कई बार जो रियलिटी है ना, वो हमको नहीं दिखाई देती है। तो जीवन में रियलिटी को पहचानने के लिए हमें चाहिए थर्ड आई ऑफ नॉलेज, तीसरी आंख, जो हम मन की आंख कहते हैं, बुद्धि का नेत्र कहते हैं। और उस बुद्धि के नेत्र के द्वारा ही हमें ये दुनिया नजर आती है। और जिस स्पेक्ट्रम से, जिस तरीके से, जिन रंगों से हम उसे देखना चाहते हैं, हम उसे देख सकते हैं। इसलिए आज हम डिफरेंट रंगों में, स्पेक्ट्रम में इस दुनिया को देखेंगे। पहली बात, व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ ड्रामा। ड्रामा में क्या करना है? प्ले इट। लाइफ इज अ ड्रामा, सो प्ले इट। हम सभी इस विशाल रंग मंच के एक्टर्स हैं। एक्टर कौन है? आज के सेशन, मॉर्निंग सेशन में आपने सुना, एक्टर कौन है? कौन है? बॉडी या सोल? आत्मा या शरीर? कौन एक्टर है? आत्मा एक्टर है, एंड ये बॉडी जो है उसका कॉस्ट्यूम। ये ड्रेस हमने पहना है इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर एक्टिंग करने के लिए। अब अगर मुझे एक अच्छी एक्टिंग करनी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरा रोल कितना बड़ा है। आजकल दुनिया में भी आप देखेंगे, प्राइज होती ना, अवार्ड्स होती है, तो सिर्फ एक हीरो का अवार्ड मिलता है? ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी अवार्ड्स होती है। उसमें किसी ने मदर का रोल प्ले किया, उसको अवार्ड मिलता है, बेस्ट मदर, बेस्ट डॉटर, और पता नहीं कितने कितने अवार्ड्स होते हैं। तो अवार्ड उसको मिलता है, चाहे वो राजा का रोल प्ले किया है, बेगर का रोल किया है, लेकिन जो रोल अच्छी तरह से प्ले किया है उसको अवार्ड मिलता है। तो जो रोल मुझे मिला है उसको मुझे बहुत अच्छी तरह से प्ले करना है। ये ड्रामा हमको सिखाते हैं। इस ड्रामा में हमारे लिए जो रोल बना हुआ है वो टेलर मेड रोल बना हुआ है। टेलर कैसे सिलाता है? आपका मेजरमेंट लेकर सिलाता है। उसी प्रकार हमको इस ड्रामा ने, इस लाइफ में जो रोल दिया है, मेरी आत्मा की कैपेसिटी के अनुसार, मेरे पावर्स के अनुसार, टैलेंट्स के अनुसार मुझे रोल मिला है। मेरा रोल मेरे से अच्छा कोई भी प्ले नहीं कर सकता है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं? दूसरों के रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं। और उसमें क्या होता है? एक स्थान पर रामलीला का ड्रामा स्टार्ट होने वाला था। लास्ट मोमेंट में पता चला कि जो उसमें एक्टर है, हनुमान का रोल बजाने वाला, वो बीमार पड़ गया। अब क्या करें? तो उन्होंने वो सब गांव में जाकर ढूंढा, तो वहां कोई एक व्यक्ति मिला, थोड़ा हट्टा कट्टा, अच्छा ठीक लग रहा था, एंड वो एक हलवाई था। तो उसको बोला कि तुम हनुमान का रोल प्ले करो। तो वो कहते हैं मुझे तो आता नहीं है कुछ डायलॉग, मैंने कभी एक्टिंग की नहीं है। तो बोलते कोई बात नहीं, तुमको कुछ ज्यादा बोलना नहीं है। वो रावण पूछेगा कि तुम कौन हो और तुमको क्या कहना है कि मैं पवन पुत्र हनुमान हो तो कहता है ठीक है इतना ही बोलना तो बोला इतना ही बोलना है, सिर्फ वो वेश पहन के जाना है। तो वो वेश पहन कर रावण के दरबार में आया। तो जब रावण को देखता है इतना भयानक और स्वरूप बहुत देखकर वो पहले घबरा जाता है, और जब रावण जो है बहुत जोर से पूछता है तुम कौन हो, तो वो डर के मारे कहता है मैं तो कल्लू हलवाई हूं। तो भले हम किसी का रोल कॉपी करके उसकी तरह बनने की भी कोशिश करें, लेकिन क्या होगा फिर, कभी ना कहीं हमारे अंदर जो एक्चुअल रोल है वो कहीं ना कहीं वो निकल आएगा। इसीलिए जो रोल मुझे मिला है, दूसरों के रोल को कॉपी करने के बजाय खुद का रोल अच्छी तरह से प्ले करें, ये हमको ड्रामा सिखाते हैं। ये ड्रामा हमको ये कहती है कि आपको हीरोइक रोल प्ले करना है। यू आर द हीरो ऑफ योर ओन ड्रामा। हीरो कौन है? शाहरुख खान, सलमान खान, वो हीरो है। हमारे फिल्म के हीरो कौन है? हम खुद ही हैं। हीरो का काम क्या होता है? हीरो ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल कुछ करता है, लेकिन हीरो जो है ना ऑर्डिनरी रोल भी क्या करेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में प्ले करेगा, तब उस वो हीरो कहलाता है। कई लोगों के हर एक्शंस उसकी प्रेज होती है, वो यहां गए उन्होंने ये खाया, क्यों? क्योंकि वो हीरो है, उन्होंने वही चीज एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में किया होगा। और जब हम एक एक्टर के रूप में इस ड्रामा में प्ले कर रहे हैं, एक बात का अटेंशन जरूर रखना है कि मुझे जो है अपना रोल प्ले करना है, एक्टर बन के प्ले करना है, न कि डायरेक्टर बनना है। कई लोग एक्टर के बजाय क्या बनना शुरू करते हैं? डायरेक्टर बनना, डायरेक्टर की सीट पर बैठते हैं कि किसको क्या करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, उसको ये डायलॉग बोलना चाहिए, उसको ये एक्टिंग करनी चाहिए। और अगर हम ये करने के लिए जाते हैं जीवन में, दूसरों को करेक्ट करने के लिए जाते हैं हमेशा, तो खुद का रोल कभी भी हम ठीक से प्ले कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए उसका फोकस, अच्छे एक्टर का फोकस कहां होता है? खुद के ऊपर होता है कि मैं कैसे एक्टिंग कर रहा हूं, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या करना है। हमारा रोल ऐसा हो जो लोग कहे वंस मोर, कोई ये ना कहे अच्छा हुआ इसका रोल तो पूरा हुआ, ऐसा ना कहे। इसलिए जो रोल हमने प्ले किया वो बेस्ट वे में प्ले करना है। एक बार ना चार्ली चैपलिन जो है वो कहीं जा रहा था, तो उसने देखा कि एक स्थान पर एक कंपटीशन चल रही थी, और वो कंपटीशन क्या थी कि कौन बेस्ट चार्ली चैपलिन का रोल प्ले कर सकता है। तो उसने कहा चलो मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करता हूं, और उसने भी पार्टिसिपेट किया। और जब रिजल्ट आया उसको थर्ड प्राइज मिला। किसको? रियल चार्ली चैपलिन को थर्ड प्राइज मिला। तो उससे भी अच्छा उसका रोल प्ले करने वाले उससे भी अच्छा अच्छे निकले। हाँ, थोड़े टाइम के लिए हम किसी का रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कई पेरेंट्स होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं उनके बच्चे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स उनके जैसा रोल ही प्ले करें। अगर फादर इंजीनियर है तो चाहता मेरा बेटा भी क्या बने? इंजीनियर ही बने। फादर डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा है तो क्या चाहते हैं कि बेटा भी क्या बने, बड़ा होकर मेरे जैसा डॉक्टर बने। लेकिन मे बी लाइफ ने उसको उसके लिए कुछ और रोल रखी है, और हम ये पूरा ड्रामा जो क्या कर रहे हैं उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसको बनना है वो जरूर बनेगा। हाँ, हम अपने रोल से औरों को इंस्पायर जरूर कर सकते हैं, लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुमको यही रोल तुमको प्ले करना है, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। अगर आपके पास एक 10 मिनट्स का टाइम है एंड आपको कोई रोल प्ले करना है, आपको स्टेज मिला है पर वो स्टेज में सब कुछ बिखरा हुआ है, और अगर आप उस समय जाकर उस स्टेज को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? आपका वो टाइम चला जाएगा। इसलिए उन चीजों को ठीक करना, स्टेज को ठीक करना, दूसरों के रोल को ठीक करना, वो सब डायरेक्टर का काम है। एंड फाइनल ट्रूथ ऑफ ड्रामा क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीवन्स रोल। एक जैसे रोल नहीं होते हैं सभी के। हर व्यक्ति को उसके अपने रोल में एक्सेप्ट करना। एंड रियलिटी इज कितना भी अच्छा एक्टर हो, लेकिन फाइनल रियलिटी ये है कि एक ना एक जब उनका रोल पूरा होगा तो हमको ये कॉस्ट्यूम छोड़कर जाना। ये सब ये ट्रूथ ऑफ ड्रामा है। तो एज लॉन्ग एज मैं ये समझती हूं कि ये एक रोल है, मैं प्ले कर रहा हूं, उतना हम उस रोल में अपने आप को एंड सभी एक्टर्स के साथ वो प्ले करते हुए हम इस ड्रामा को एंजॉय करेंगे। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज अ जर्नी। लाइफ एक बहुत सुंदर जर्नी है, पर इस जर्नी ऑफ लाइफ में सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारी यात्रा भी बहुत सुखद होनी चाहिए। इस लाइफ रूपी जर्नी में हमें बहुत सारे पैसेंजर्स मिलते हैं, जैसे ट्रेन में भी जब ट्रेवल करते हैं एक स्टेशन पे बहुत सारे पैसेंजर्स आते हैं, कुछ समय के लिए हम आपस में सुख दुख शेयर करते हैं और जब उनका स्टेशन आता है वो सब उतर जाते हैं। तो क्या हम भी उतर जाते हैं उनके स्टेशन पर? नहीं, हम आगे हमारी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। जैसे एक मान लीजिए एक स्थान से हमने यात्रा स्टार्ट की अपने गाड़ी में, हम अपने फैमिली के साथ कार में हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, कार चलाते चलाते हम खा रहे पी रहे बातें कर रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, सडनली हमारी नजर जाते हैं यहां से एक गाड़ी आई, वो हमसे आगे चली गई। फिर थोड़ी देर बाद देखा यहां से एक गाड़ी है, यहां से हमसे आगे चली गई, तो हम सोचते कि चलो हम क्यों ना रेस करें। और फिर हम क्या करना शुरू करते हैं, रेस करना शुरू करते। एक गाड़ी से हम रेस करते आगे गए, फिर देखा दूसरी गाड़ी स्पीड में आई, तब हम सोचते हैं कि इससे भी हमको आगे जाना है। फिर उससे आगे गए तो तीसरी गाड़ी आई जिसको हमको रेस करना है, लेकिन कितनी भी हम स्पीड में चलाए कुछ गाड़ियां तो हमारी आगे होंगी ही। और जब हम उस रेस में हैं तो हम क्या महसूस करते हैं, उस समय हमारी फुल स्पीड होगी और उस समय कोई हमको खाने के लिए दे कुछ पीने के लिए कहे, हम क्या कहेंगे, मत डिस्टर्ब करो अभी मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो, क्यों? तो इस प्रकार आज हमने क्या बना दी हमारी लाइफ को, एक सुंदर जर्नी के बजाय क्या बना दी है, उसको एक रेस बना दी है, जहां हम हर किसी से रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और ये रेस करने के बाद भी हमें वो खुशी नहीं है। तो अगर एंजॉय करना है उसे अपनी टर्म्स पे आप चलते रहो, अपनी स्पीड लिमिट जो आप कर सकते हैं उसमें आप करते रहो, और दूसरों पैसेंजर्स के साथ हार्मनी में चलना। एक दिन एक हस्बैंड जब घर में आया तो उसकी वाइफ जो है आराम से बैठकर टीवी देख रही थी, तो वो पूछता है कि क्या देख रही हो, तो कहती है कुकिंग शो देख रही हूं। तो वो कहता है कि सारा दिन कुकिंग शो देखती हूँ, खाना तो अच्छा कभी बनाती नहीं हूं। तो वो पत्नी उसको देखकर कहती है आप भी तो कौन बनेगा करोड़पति देखते हो, आज तक मैंने कुछ कहा? तो आज जो है लाइफ ऐसी है, जब हम किसी को भी कुछ कहेंगे तो वो भी हमको जरूर कुछ ना कुछ सुनाएंगे। और लाइफ की जर्नी में हम दुखी हुए हैं बिकॉज हम हमेशा औरों के साथ से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ये व्यक्ति मेरा एक्सपेक्टेशन पूरा करे, ये पूरा करे, लेकिन क्या हमने सोचा कि हम लाइफ को क्या दे सकते हैं? जो हमको हमेशा खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, लव चाहिए, सबसे हमको चाहिए, लेकिन क्या हमने सोचा कि हम क्या दे सकते हैं? हमें चाहिए माना हमारा हाथ हमेशा कैसा है, ऐसा है, प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग, मुझे क्या मिलेगा। एक व्यक्ति डूब रहा था तो बचाने के लिए किसने उसको कहा कि तुम्हारा हाथ दे दो, तो देने को ही तैयार नहीं था। फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा उसको कहो कि मेरा हाथ ले लो, तो जब उसने कहा मेरा हाथ ले लो तो वो अपने आप को बचाने के लिए तैयार हो गया। सो ऑलवेज वी वॉन्ट इन लाइफ वॉट आई कैन गेट, मुझे कहां से क्या मिले। तो ऑलवेज हम ऐसे ही रहे, लेकिन आप देखेंगे आपका लाइफ का प्रिंसिपल फ्रॉम टेकिंग टू गिविंग हो जाएगा, आप देखेंगे आपकी लाइफ कितनी सुंदर हो जाएगी, ब्यूटिफुल होने लगेगी। हमेशा लेने की भावना से देने की भावना में चेंज करना। यहाँ एक क्वेश्चन है, आर यू हैप्पी? अगर आंसर है यस, अगर आंसर है यस, देन कीप डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग. तो आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए. आर यू हैप्पी? इफ योर आंसर है नो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू वॉन्ट टू बी हैप्पी? क्या आप खुश रहना चाहते हो? तो अगर उसका आंसर है नो, देन जो आप कर रहे वही करते रहिए. और यदि आपका आंसर है यस, डू यू वॉन्ट टू बी यस हैप्पी, देन से यस, देन यू हैव टू चेंज समथिंग. अगर आपको खुश रहना है तो कुछ ना कुछ चेंज हमको करना है. एक व्यक्ति ने एक बुक लिखा, हाउ टू चेंज योर वाइफ इन 30 डेज. हाउ टू चेंज योर वाइफ इन 30 डेज. उसकी 1 लाख कॉपी सेल हुई. पब्लिशर ने रियलाइज किया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है. उस बुक का नाम था हाउ टू चेंज योर लाइफ, W के बजाय L था. तो इसने दोबारा पब्लिश की हाउ टू चेंज योर लाइफ इन 30 डेज. उसकी सिर्फ 10,000 कॉपीज बिकी. Why? Because आज क्या है, हर एक व्यक्ति क्या करना चाहता है, दूसरे को चेंज करें कि मैं कैसे भी करके दूसरे को कैसे चेंज करूं. खुद को चेंज करना कोई नहीं चाहता. एंड जब तक आप हमेशा ये सोचते रहेंगे मैं इसको कैसे चेंज करूं, उसको कैसे, ये थोड़ा सा बदल जाए ना तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी. उनको छोड़ा हमको अपने आप को चेंज करना कितना डिफिकल्ट है. तो इसलिए रैदर देन क्रिटिसाइजिंग एंड ट्राइंग टू चेंज अदर्स और ट्राइंग टू ब्लेम अदर्स, लर्न टू एंजॉय द जर्नी ऑफ योर लाइफ. दो लेडीज आपस में बात कर रही थी. एक लेडी ने दूसरे लेडी से पूछा कि आपका दिन कैसा था? तो कहती दिन तो कुछ खास नहीं था. रात को हस्बैंड जो है घर आए, 1 मिनट 2 मिनट में खाना खा लिया, जाकर 1 मिनट में सो गए, बस किसी से बात नहीं किया. फिर वो पूछते आपका दिन कैसा था? तो कहते बहुत अच्छा था. तो क्या अच्छा था? तो कहते कि कल जो हस्बैंड ऑफिस से आए, फिर हम लोग बाहर गए खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में, फिर हमने वहां बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया, खाना खा लिया, फिर हम चलते हुए घर आए, आपस में बहुत बातचीत की, और फिर घर आने के बाद हमने कैंडल्स जलाए, दिया जलाए, बहुत अच्छा दिन था. दूसरी ओर दो हस्बैंड्स बात कर रहे हैं. एक ने पूछा आपका दिन कैसा था? तो कहता बहुत अच्छा था, मैं बहुत थका हुआ घर गया, वाइफ ने खाना रेडी रखा था, खाना खा लिया मैंने 1 मिनट में और सो गया, बहुत अच्छा रिलैक्स रहा. दूसरे ने पूछा आपका दिन कैसा था? तो कहता पूछो मत, जब मैं घर गया तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, बिल पे नहीं किया तो लाइट नहीं थी, तो जबरदस्ती रेस्टोरेंट जाना पड़ा और इतना महंगा बिल निकला कि मेरे सारे पैसे खत्म हो गए, पैसा सा, तो इसलिए वॉकिंग करके हमको घर चलना पड़ा और सारे रास्ते मेरी वाइफ इतना सुनाती रही मुझे. और फिर घर आए तो रियलाइज किया कि लाइट नहीं है, तो दिए कैंडल सब जला के काम चलाना पड़ा. तो व्हाट इज प्रेजेंटेड, रियलिटी क्या है एंड लाइफ में प्रेजेंट क्या होता है. कहीं जाएंगे लोग जो है फोटो क्लिक करेंगे खुशी के, फेसबुक पे डाल देंगे, भले पीछे झगड़ते रहे. तो डोंट सी अदर्स, डोंट सी एक्सटर्नल थिंग्स एंड लीड लाइफ लाइक दैट. ट्राई टू सी लाइफ इन इट्स ओन रियलिटी एंड देन यू विल फाइंड कि एक्चुअली हमारी ये लाइफ की बातें क्या एग्जैक्टली रियलिटी में है. नेक्स्ट इज लाइफ इज अ बुक. बुक पढ़ना माना स्टडिंग, लर्न करना हमें. जब हम जीवन में सीखने की एक एम रखते हैं तो लर्निंग माना ग्रो करना लाइफ में. और जो व्यक्ति हमेशा लर्न करता रहता है लाइफ में वो हमेशा यंग रहता है. एक बार आदि प्रकाशमणि जी से पूछा किसी ने कि आप इतनी बड़ी संस्था की हेड है, आप कैसे सब संभालती हो? तो दादी ने कहा कि मैं कभी अपने आप को ऐसा हेड नहीं समझती हूं, मैं तो समझती हूं कि मैं एक गॉडली स्टूडेंट हूं, एक ईश्वरीय विद्यार्थी हूं. तो विद्यार्थी माना वो हमेशा सीखता रहता. तो हम सब स्टूडेंट्स हैं ये लाइफ की यूनिवर्सिटी के हम सब स्टूडेंट हैं, लेकिन इस लाइफ की यूनिवर्सिटी में जैसे वो स्कूल में होता है कि आप पढ़ाई पढ़ते हैं एंड फिर आपको एग्जाम देना होता है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में क्या होता है, पहले आपकी एग्जामिनेशन होती है फिर आपकी पढ़ाई होती है। एक बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति, उससे पूछा गया कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे बने, तो उसने कहा कि मैंने हमेशा जीवन में राइट डिसीजन ही लिया है इसीलिए मैं सक्सेसफुल हूं। फिर उसे पूछा कि आप हमेशा ही राइट डिसीजन कैसे लेते हो, तो कहते कि मेरे लाइफ का बहुत अनुभव है इसीलिए। तो फिर पूछा आपको इतना सारा अनुभव कहां से मिला, तो कहता है मेरे जीवन के रॉन्ग डिसीजन, गलत डिसीजन। तो इसीलिए अगर हमें लाइफ की सक्सेस को प्राप्त करना है तो कई बार हमारे लाइफ में रॉन्ग डिसीजंस भी होंगे, और वो रॉन्ग डिसीजंस ही कई बार हमारे जीवन को एक गाइड बनते हैं ताकि हम उसको एक सक्सेसफुल लाइफ की ओर ले जा सकें। तो अब कौशिक भाई हमारे बीच में आएंगे और एक गीत के माध्यम से वो अपने जो भाव है, जो लाइफ के प्रति कहना चाहते हैं वो कहेंगे। चलो आप सभी भी खड़े हो जाएंगे और आप सभी भी इनके साथ जो है पार्टिसिपेट करेंगे। आप सभी खड़े हो जाएंगे और इस जिंदगी के सफर को हम सभी एंजॉय करेंगे कौशिक भाई के साथ।
जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, 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 ओले ओले ओ।
थैंक यू कौशिक भाई, थैंक यू। आप सभी को अपने लिए तालियां बजाएंगे। मैसेज क्या है सॉन्ग का, मुस्कुराते हुए दिन बिताना। हर दिन हमारा मुस्कुराते हुए है, जिंदगी एक सफर है सुहाना। तो इसीलिए इस पल में जीना बहुत जरूरी है, जिस पल में है हम हैं, टोटली जब हम इस पल में रहते हैं तो हम रियली जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो ये जिंदगी से हम सीख रहे हैं कि जैसे एक बुक है और हम उसे लर्न कर रहे हैं और उस एक्सपीरियंस के आधार पर हम ग्रो कर रहे हैं। अब ये नॉलेज, बुक से हमको नॉलेज प्राप्त होती है, तो नॉलेज और विजडम, एक समझ, जिंदगी को समझना, पढ़ना माने जिंदगी को पढ़ना, माने जिंदगी को हमें समझना है। तो कैसे हम इस जिंदगी को समझते हैं? एक गधा और चीता दोनों के बीच में बहस हो गई। आप सभी क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आपको क्वेश्चन पूछेंगे। गधा और चीता दोनों के बीच में बहस हो गई। गधा कहता है आसमान का रंग जो है काला है, चीता कहता है आसमान का रंग नीला है। तो दोनों आर्ग्यूमेंट करते हुए शेर के पास गए और कहा बताओ हमको राइट कौन है। तो जो शेर है वो कहता है कि जो रॉन्ग है ना उसको मैं सजा दूंगा। तो जो शेर है, राजा शेर है, उसने चीते को कहा कि तुमको सजा मिलेगी, तुम जेल में जाओगे। तो चीता जो है गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मैं तो, आपको पता है मैं तो सही हूं, फिर भी आप मुझे जेल में भेज रहे हो। तो कहते हैं कि मैं इसलिए तुमको जेल में नहीं भेज रहा हूं कि तुम क्योंकि तुम सही बोल रहे हो या सही बोल रहे हो, लेकिन इसलिए क्योंकि तुमने इस गधे के साथ बहस की। तो आप सोचो कि आपकी लाइफ का वैल्यूएबल समय कितने लोगों के साथ बहस में जाता है, जिसका रिजल्ट आपको यह भी पता है इसका कुछ रिजल्ट निकलने नहीं वाला है। तो इसीलिए डोंट वेस्ट टाइम इन अननेसेसरी थिंग्स, जो थिंग्स आपके कंट्रोल के बाहर है। एक आपने इस नॉलेज को कितना समझा है, लाइफ को कितना समझा है? आपको एक क्वेश्चन पूछती हूं। अगर मेरे पास इस सेशन के बाद मैं आपको गिफ्ट दूंगी, ओके, आपको चूज करनी है, एक है राम की मूर्ति और एक है रावण की मूर्ति, आप कौन सी मूर्ति लोगे? राम की मूर्ति कितने लोग लेंगे? सभी राम की मूर्ति। अच्छा, अभी सेकेंड क्वेश्चन। रावण की मूर्ति जो है ना वो लकड़ी की है, सॉरी, रावण की मूर्ति जो है वो सोने की है और राम की मूर्ति लकड़ी की है, अभी कौन सी मूर्ति चाहिए? श्योर वही चाहिए। सो आपकी जीवन की वैल्यूज विल गाइड यू इन मेनी थिंग्स इन लाइफ। आपके लिए लाइफ में क्या वैल्यूएबल है, आपने उसको कितना समझा है और किस हद तक आप अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। इसमें लिखा लाइफ इज लाइक अ बुक, सम चैप्टर्स आर सैड, सम हैप्पी एंड सम एक्साइटिंग, बट इफ यू नेवर टर्न द पेज यू विल नेवर नो व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर। कभी हम एक ही चैप्टर में अटके रहते हैं, अगले चैप्टर में क्या होगा हमको पता ही नहीं। कभी लोग एक ही बात में स्टक होते हैं, कहेंगे कि तुम मेरे साथ ऐसा ऐसा किया 10 साल पहले, 20 साल पहले तुमने मुझे ऐसे ऐसे कहा था, मुझे अभी भी याद है। कितने साल पहले कहा था? 20 साल पहले मेरे को, लेकिन अभी भी याद है। तो तकलीफ किसको है, मुझे हो रही है या उस व्यक्ति को हो रही है? मुझे हो रही है, क्यों? क्योंकि 20 साल तक मैंने क्या किया, उसकी बातों को अपने मन में रखा था। और वो कहेगा अच्छा मैंने ऐसे बोला था, सॉरी मुझे ध्यान नहीं था। लेकिन फिर हम कितने तकलीफ में रहे, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। इसलिए लिखा है यहां पर बी मर्सीफुल, बी हेल्पफुल एंड बी थैंकफुल। बी की तरह बनो, मधुमक्खी की तरह बनो, मक्खी की तरह नहीं बनो। मक्खी क्या करती है, गंदगी में जाती है और मधुमक्खी फूलों में जाती है, वो अच्छी अच्छी चीजें लेती है। जैसे जीवन से भी अच्छी अच्छी चीजें लर्न करो। एक है दिल में उतरने वाले और एक है दिल से उतरने वाले। क्या बनना है? दिल में उतरने वाले। कभी ऐसा हमारे जीवन के एक्शंस ना हो कि दूसरों के दिल से ही हम उतर जाए। लाइफ इज अ सॉन्ग, सिंग इट, गाना। आप सभी ने अभी डांस भी किया, गीत भी गाया। कोई भी सॉन्ग जो है वो 7 सुरों से बनती है, राइट? तो ये 7 सुर जो है वो उस गीत को बहुत सुंदर बनाते हैं। तो हमारे जीवन के साथ सुर कौन से हैं? वो है हमारी 7 क्वालिटीज, नॉलेज, प्योरिटी, पावर, ब्लेस, हैप्पीनेस, ये सारी हमारी डिवाइन क्वालिटीज हैं। अगर हमारी जीवन की म्यूजिक वो 7 क्वालिटीज के आधार पर होती है तो हमारी हम खुद ही अपना सॉन्ग जो है वो बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने अपनी म्यूजिक लाइफ की म्यूजिक का लिरिक्स कैसे लिखा है? शब्द होते हैं ना, लिरिक्स होते हैं, तो कई लोग लिरिक्स कैसे लिखते रहे, मैं तो दुर्भाग्यशाली हूं, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, इस प्रकार के लिरिक्स लिखते हैं। लेकिन हम अपने लाइफ के लिरिक्स कैसे लिखें कि मैं बहुत शांत स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं स्नेह स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, ये लिरिक्स हमको ही लिखना है। म्यूजिक माना बैलेंस में बजना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति म्यूजिशियन कुछ और ट्यून बजा रहा है, म्यूजिशियन जो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने वाले कुछ और ट्यून में बज रहा है, बैलेंस नहीं, तो क्या करेंगे, ये बंद कर दो। तो ये जीवन में म्यूजिक सिखाती कि हमको जीवन में बैलेंस में रहो। महात्मा बुद्ध के जीवन कहानी में आता है कि वो बहुत ज्यादा तपस्या करते थे और एक दिन जो है जो वो चाहते थे ना उनको वो प्राप्तियां नहीं हो रही थी, तो वो बहुत एक परेशान जैसे थे उस चीज के लिए कि जो वो चाह रहे हैं उनके स्पिरिचुअल एफर्ट्स में नहीं मिल रहा है। तो उनको एक रात को एक स्वप्न आया, उस स्वप्न में एक फरिश्ता जो है एक गिटार बजा रहा है, पर वो कुछ बज नहीं पा रहा है उसमें, क्योंकि उसकी जो स्ट्रिंग्स जो है गिटार के बहुत लूज थे, तो वो बज नहीं पा रहा था। तो दूसरे एक फरिश्ते को देखा कि वो भी बजाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस गिटार के स्ट्रिंग्स जो है वो बहुत टाइट थे। और तीसरा फरिश्ता बहुत सुंदर म्यूजिक क्रिएट कर रहा था क्योंकि वो स्ट्रिंग्स जो है वो बैलेंस में है। तो जो बैलेंस में रहता है अपनी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, आप देखेंगे उसकी लाइफ बहुत स्टेडी चलती है। स्पिरिचुअल लाइफ माना ही बैलेंस्ड लाइफ, योगी जीवन माना बैलेंस्ड जीवन, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, बैलेंस में लाइफ को चलाना। म्यूजिक सिखाती है कि हमको परफेक्शन लाना। अगर म्यूजिक परफेक्ट नहीं है तो सुनने में भी मजा नहीं आता है, ऊपर नीचे होता रहता है। एक बहुत फेमस सिंगर है, एक व्यक्ति ने एक ऑडियंस में गीत गाया तो सारी ऑडियंस ने कहा वंस मोर, तो खुश होकर वापस वो गाने लगा। फिर ऑडियंस ने कहा वंस मोर, तो सोचा सबको मेरी म्यूजिक इतनी पसंद आई तो फिर से वो गाता है। फिर लोगों ने कहा वंस मोर, फिर सोचे वंस मोर क्यों कह रहा, ठीक है फिर से वो गाता है। और फिर से वो जब गाता है लोग कहते हैं वंस मोर, तो वो पूछता है कि आपको इतना मेरा सॉन्ग पसंद आया आप वंस मोर कह रहे। तो ऑडियंस ने कहा कि जब तक आप ये म्यूजिक ठीक से नहीं गाओगे, गीत ठीक से नहीं गाओगे, तब तक आप क्या कहेंगे, वंस मोर कहेंगे। तो कई चीजें जो है हम सीखते सीखते उसमें परफेक्ट होते हैं। कोई चीजें आपको बार बार करनी पड़ती है तो उसमें एक्सपर्ट होते हैं। मेरी हमको कुछ चेंज करना हो, एक रात में चेंज नहीं होगा, लेकिन आप जब बार बार करोगे, बार बार पुरुषार्थ करोगे, मेडिटेशन भी एक दिन से नहीं होता है, आपको रोज थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ेगा एंड धीरे धीरे आप उसमें परफेक्ट होगे। एक्सरसाइज भी क्या करना पड़ता है, एक दिन करोगे तो होगा, आपको रोज करना पड़ेगा तब आपको रिजल्ट्स मिलेगी। यहां आप मेडिटेशन सीख कर जाएंगे और यहां की यहां छोड़कर नहीं जाना, घर में भी आपको रोज प्रैक्टिस करना है। मॉर्निंग टाइम जब आप उठते हो, फर्स्ट 2 आवर्स उसको अब्सॉर्प्शन पीरियड कहते हैं, उस समय आपने जो अब्सॉर्ब किया सारे दिन में आपके साथ चलेगा। तो मॉर्निंग टाइम या तो कुछ अच्छा देखना, सुनना, पढ़ना, थोड़ा टाइम मेडिटेशन करना, उससे आपकी दिनचर्या स्टार्ट हो, क्योंकि बाकी चीजों के लिए आपको पूरा समय, पूरा दिन मिलेगा, इन चीजों के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। तो ये करते करते आप इसमें परफेक्शन लाओगे, आपकी लाइफ को आप एक परफेक्ट लेवल तक लेकर जाओगे जहां आपको उसमें संतुष्टि है। एंड नेक्स्ट इज लाइफ इज अ गेम। गेम खेलना सबको अच्छा लगता है, कभी कभी बहुत डिफिकल्ट गेम्स भी होते हैं तो भी लोग एंजॉय करके खेलते हैं। एक गेम सभी ने खेली है, सभी ने खेला है ये गेम, मजा आता था। अभी मजा आ रहा है वो बोर्ड पे नहीं जो लाइफ में ये गेम चल रही है इसमें मजा आ रहा है इस गेम ऑफ लाइफ में भी दोनों चीजें आपको दिखाई देगी, सांप भी है तो सीढ़ी भी है। डाइस घुमाते घुमाते हमको सीढ़ी मिल जाती है, ऊपर चढ़ते हैं, फिर डाइस घूमती है तो फिर कभी सांप काट लेता है, फिर नीचे उतर जाते हैं। अच्छा, नीचे उतरने के बाद ऐसा सोच रहे कि अब चले अभी सांप ने काट लिया, अभी तो हम आगे जा ही नहीं सकते, बैठ जाते नहीं, फिर डाइस घुमाते हैं और चलते चलते हमको फिर से सीढ़ी मिल ही जाती है। तो इस प्रकार ये गेम सिखाती है कि हमको मोमेंटम में रहना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अगर कोई बैट्समैन जो है, अगर वो ये सोचे कि बॉल आए ही नहीं, मैं अगर आउट हो जाऊंगा तो फिर वो खेल ही नहीं पाएगा ना। अगर उसको सिक्सर, सचिन तेंदुलकर को अगर सिक्सर मारना है तो उसको बॉल को इनवाइट करना होगा। तो इसी प्रकार लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन हम उसको कैसे देखते हैं। एक व्यक्ति ने डॉक्टर से पूछा कि मुझे ऐसी जगह बताइए जहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कहते हैं वो शमशान में जाओ, एंड ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। तो ईसीजी कैसा होता है, ईसीजी कैसा होता है, अप्स एंड डाउन्स। तो लाइफ, और ऐसा स्ट्रेट हो जाए तो एंड ऑफ लाइफ। तो लाइफ माना क्या, विथ ऑल अप्स एंड डाउन्स, उसमें मुझे पार करते हुए जाना है। और जब हम इस प्रकार से जीवन जीते हैं तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस बनता है, जब हम एंजॉय करते हैं लाइफ को, एक गेम प्ले करना। अगर आपने लाइफ को एक गेम के रूप में देखा तो आप उसको एंजॉय करेंगे। बहुत ज्यादा कोई भी बात को अपने लाइफ में सीरियसली नहीं लेना। अगर बहुत ज्यादा सीरियसली लेंगे तो वो चीज जो है हमारे लाइफ से भी बड़ी हो जाएगी। प्रॉब्लम इतनी छोटी है, लेकिन हमने क्या किया है, उस प्रॉब्लम को हमारे लाइफ से भी बड़ी बात बना दी है। अब हमारी प्रॉब्लम ही क्या बन गई, हमारी लाइफ बन गई है। तो जिसको वो तरीका आता है कि वो क्या करता है, बड़ी बात को भी छोटे रूप में देखता है। अगर हम एरोप्लेन को देखते हैं नीचे से देखेंगे तो, पहाड़ को देखते हैं तो नीचे से देखते तो बहुत बड़ी दिखाई देती है, और एरोप्लेन से देखेंगे तो वो छोटी नजर आती है। प्रॉब्लम को हम ऊंची स्थिति से जब देखते हैं तब हमारे लिए वो प्रॉब्लम वो छोटी दिखाई देती है। एक जो पोयम है यहां पर लिखा है, सभी को ये पोयम पता है। अच्छा, जिंदगी है छोटी, हर पल में खुश रहो, ऑफिस में खुश रहो, घर में खुश रहो, आज पनीर नहीं है तो दाल में ही खुश रहो, आज जिम जाने का समय नहीं है तो दो कदम चल के ही खुश रहो, आज कोई नाराज है तो उसके इस अंदाज में ही खुश रहो, जिसे देख नहीं सकते उसकी आवाज में ही खुश रहो, जिसे पा नहीं सकते हैं उसकी याद में ही खुश रहो, लैपटॉप ना मिला तो क्या डेस्कटॉप में खुश रहो, बीता हुआ कल जा चुका है उसकी मीठी यादों में ही खुश रहो, हंसते हंसते ये पल बीत जाएंगे आज में ही खुश रहो, जिंदगी है छोटी हर पल में खुश रहो। यस, जिंदगी है छोटी हर पल में खुश रहो। और लास्ट में इस फुल जिंदगी का मतलब क्या है, एक गुरु जो है उसके पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मुझे आप थोड़ा ज्ञान समझाइए कि ये जीवन क्या है। तो वो उसको एक ग्लास देता है, एक ग्लास ऑफ वाटर, और उसको कहता है एक मुट्ठी उसमें नमक डालो, और उसमें नमक डालता है और वो पी लेता है। तो जब वो ग्लास ऑफ वाटर पी लेता है तो पूछता है वो ट्राई करता है पीने के लिए, लेकिन वो पी नहीं पाता, वो कहता है बहुत खारा है नहीं पी सकता। फिर वो गुरु उस व्यक्ति को एक झील के पास ले जाता है और फिर वहां उस झील में एक मुट्ठी भर नमक उसमें डाल देता है और फिर कहता है अब वो पानी को टेस्ट करो। तो कहता है कि वो तो मीठा है, वो पानी मीठा से खारा नहीं है। तो उसी प्रकार अगर हमने अपनी लाइफ को एक ग्लास ऑफ वाटर तक सीमित रखा तो क्या होगा, हमें बहुत वो खारा नजर आएगा। लेकिन अगर ये ब्यूटी एंजॉय करना है तो इस झील माना वो विशालता को देखो, जीवन की विशालता को देखो, उसको समझो, एंड मेडिटेशन के द्वारा, नॉलेज के द्वारा, इस जीवन को बहुत ऊंचे लक्ष्य की ओर आप लेकर जाएंगे, उसको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम से आप उसको समझ पाएंगे। एंड जब उस नॉलेज को यूज करके हम जीवन में आगे चलते जाएंगे तो हमारी लाइफ जो है अपने आप बहुत खूबसूरत बनेगी। तो अभी हम फ्यू मोमेंट्स ऑफ मेडिटेशन करेंगे और इस मेडिटेशन में हम लाइफ को देखेंगे एंड कई चीजें जो है लाइफ में हमने होल्ड करके रखी है, कोई बातों को, उन सब बातों को हम छोड़ते जाएंगे। ओके, आर यू रेडी फॉर मेडिटेशन? ठीक, ओम शांति। जीवन के इस सुंदर यात्रा में जब हम चलते जाते हैं, हमारे साथ बहुत सारे यात्री हैं जो इस यात्रा में चल रहे हैं। चलते चलते हर एक्टर, हर ट्रैवलर का पार्ट मैं एक्सेप्ट करती हूं। मैं अपने जीवन को एक हार्मनी में बिताने का लक्ष्य रखती हूं। जीवन में चलते चलते मैंने कई चीजों को होल्ड किया है, पकड़ के रखा है, जो आज मुझे दुख दे रही है, तकलीफ दे रही है। आज के दिन मैं अपने मन रूपी स्क्रीन में उन लोगों को याद कर रही हूं जिसने मुझे कोई न कोई कारण से दुख दिया है, तकलीफ दी है, कष्ट पहुंचाया है। ऐसे लोगों को मैं देख रही हूं और बहुत ही सच्चे दिल से, बड़ी दिल रख के, जीवन की विशालता को समझते हुए उन यात्रियों को, उन एक्टर्स को सच्चे दिल से मैं माफ कर रही हूं। और मैं अपने अंदर की जो भी नेगेटिव फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स जो भी मैंने होल्ड करके रखा है उनके प्रति आज मैं उसे रिलीज कर रही हूं, क्योंकि मुझे इस जीवन रूपी यात्रा में आगे बढ़ना है। मुझे कोई भी नकारात्मक बातों में अटकना नहीं है। ऐसे लोगों को मैं आज माफ करके अपने आप लाइट महसूस कर रही हूं। साथ साथ मैं उन लोगों को भी याद कर रहा हूं जिसको जाने अनजाने में मैंने तकलीफ दी हो, दुख पहुंचाया है, कष्ट दिया है, उनसे मैं सच्ची माफी ले रही हूं। वो भी मुझे सच्चे दिल से माफ कर रहे हैं। माफी देना भी जरूरी है और मुझे माफी लेना भी जरूरी है। जब मैं ये दोनों कार्य कर रही हूं तो मैं अपने आप को बहुत लाइट महसूस कर रही हूं, ब्लिसफुल महसूस कर रही हूं, आनंदित महसूस कर रही हूं। और बीती हुई बातों को, कुछ कड़वी यादें, उनको छोड़ते हुए, मीठी यादों को लेते हुए अपने जीवन की यात्रा को आगे ले जा रही हूं। अपने लाइफ का म्यूजिक डायरेक्टर मैं खुद हूं, जहां मैं अपने लिए बहुत सुंदर लिरिक्स लिख रही हूं, शब्द लिख रही हूं कि मैं सुख स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, ब्लिसफुल हूं, भाग्यशाली हूं, सकारात्मक हूं। यही मेरी जीवन की सच्चाई है और इस जीवन को एक खेल की तरह देखना सीख रही हूं, जहां कोई भी परिस्थिति मेरी शक्ति से बड़ी नहीं है, क्योंकि परमात्मा स्वयं सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। उसका हाथ और साथ सदैव मुझ पर है। परमात्मा के वरदानों की शक्ति मुझे चला रही है। परमात्मा की ब्लेसिंग्स हर समय मैं अपने ऊपर महसूस करती हूँ और इस परमात्मा की ब्लेसिंग्स द्वारा मैं अपने लाइफ को ब्लिसफुल बना रही हूँ। परमात्मा की ब्लेसिंग से ही मैं अपने जीवन को बहुत सशक्त बना रही हूँ और खुशनुमा जीवन बना रही हूँ, क्योंकि मैं खुशनुमा हूँ और खुशनसीब आत्मा हूँ, और यही खुशी का मुझे जीवन में हर पल अनुभव करना है। ओम शांति। ओम शांति।